ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर जाएंगे। वे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 को संबोधित करेंगे। श्री मोदी पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वाधवन बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों के रखरखाव, गहरे ड्राफ्ट की सुविधा और बड़े माल वाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। पालघर जिले के दहानु कस्बे के पास स्थित वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लगभग 1,560 करोड़ रूपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री मोदी करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्स सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज ऑनलाइन माध्यम से केरल के अलप्पुझा में अरंथुंकल मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अरंथुंकल क्षेत्र के मछुआरों की लगातार मांग पर वर्ष 1991 में अरंथुंकल फिश लैंडिंग सेंटर शुरू किया गया था। तीसरे चरण के कार्यों के लिए 150 करोड़ रूपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। कोयला मंत्रालय ने कोयला लॉजिस्टिक कार्यक्रम के अंतर्गत 38 प्राथमिक रेल परियोजनाओं की पहचान की है। सभी परियोजनाएं रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए द्वारा जल्द पूरी की जाएंगी। इन परियोजनाओं को उद्देश्य रेल संपर्क बढ़ाना, समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यात्रा लागत कम करना और देश भर में कोयले की पहुंच को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं में सरकार ने ओडिशा में 2 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। सटगेगा भालूमुडा डबल लाइन रेल परियोजना और बारगढ़ रोड नवापारा रोड सिंगल लाइन परियोजना कोयला खदानों द्वारा निकाले गए कोयले की निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में इसराइल के महानिदेशक याकूब बिलस्टीन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत इसराइल सहयोग के निरंतर विकास पर बल दिया और मध्य पूर्व एशिया में चल रही स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के हरियाणा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई। कल दोपहर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा कोर समिति की बैठक श्री नड्डा के आवास पर हुई। इसमें श्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। खाड़ी देशों से संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जसमीत हकीमजादा से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मुंबई, सोलापुर और इंदौर के 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। वे अमेरिका के विदेशी मादक पदार्थ संबंधी किंगपिन अधिनियम के तहत एक प्रमुख विदेशी मादक पदार्थ तस्कर के रूप में सूचीबद्ध है। ये तलाशी अभियान धनशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत चलाया गया। ईडी ने बताया कि जसमीत अमरीका के ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित नागरिक की सूची में भी शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। नालंदा जिले में 750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 90 एकड़ में फैले खेल परिसर और खेल अकादमी का निर्माण किया गया है। ये देश का पहला खेल स्थल होगा जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय की सुविधा होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओलंपियन श्रेयाशी सिंह और अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही सहित 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने हॉकी टूर्नामेंट के लिए बिहार के पहले एस्ट्रोटर्फ का भी उद्घाटन किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के मिक्स्ड कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार की तीरंदाजी टीम ने 1,399 के सम्मिलित स्कोर के साथ पैरालंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तीरंदाजी की यह जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में 2 सितम्बर को क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।